रखने वाले सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करती हूँ। आज के इस एपिसोड में हम 13वें अध्याय के स्पष्टीकरण को लेकर प्रस्तुत हैं। इस अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ क्या है, इस पर परमात्मा ने चर्चा की है। इसी अध्याय में यह बताया गया है कि हम मनुष्यात्माएं परमात्मा से संबंध कैसे जोड़े। यह श्रेष्ठ ज्ञान हमें केवल श्रीमद् भगवद गीता से ही प्राप्त होता है। तो आइए, आज के श्लोकों का क्या अभिप्राय निकलता है?
श्रीमद् भगवद गीता हमें नित्य नए नए संदेश देती है, हमारे चित्त को शांत करती है, हमारे ज्ञान के भंडार को भरपूर करती है। आज हम गीता के 13वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की चर्चा की है। और ज्ञान क्या है अथवा ज्ञानी का लक्षण क्या होता है, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। इन दोनों बातों की हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ इस संसार में बहुत से लोग अपने को ज्ञानी कहलाते हैं, वो भी जिन्होंने शास्त्र और ग्रंथों का अध्ययन किया है, और वो भी जो किसी विशेष विषय में निपुण हैं। हम शास्त्र और ग्रंथों के अध्ययन पर आ जाएं। पहले ये अधिकार ब्राह्मणों को था, ब्राह्मण ही अपने को शिक्षा का अधिकारी समझते थे, शास्त्र और ग्रंथों का संपूर्ण अध्ययन करते थे। इस कारण उनमें कहीं कहीं अहम भी आ जाता था। परंतु जिसके पास संपूर्ण ज्ञान होगा, जो ज्ञानी होगा, उसके क्या लक्षण होंगे और ज्ञान किस किस चीज का और ज्ञान कहाँ से आता है, इसकी चर्चा हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मनुष्य के पास होना चाहिए स्वयं का ज्ञान। मैं कौन हूँ, मेरा असली स्वरूप क्या है, मेरे गुण और शक्तियाँ क्या हैं, मेरे संस्कार और पवित्रता कैसी है, मैं इस संसार रूपी रंगमंच पर कहाँ से अवतरित हुआ हूँ, मेरा मूल वतन कहाँ है, जब मैं मुक्त अवस्था में आत्मा थी तो मेरा कैसा स्वरूप था, मैं कैसे उत्थान और पतन की ओर चलती हूँ, ये सब ज्ञान स्वयं का ज्ञान है। इसी की शुरुआत करते हुए भगवान ने इस अध्याय के प्रारंभ में ही कहा है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। ये क्षेत्र शरीर है और क्षेत्रज्ञ इसमें रहने वाली आत्मा, ये दो चीजें हैं। हम शब्दों की क्लिष्टता में न जाकर सहज भाव से इस बात को जान लें कि वास्तव में ये शरीर जो हमें दिखाई देता है, जिसके बारे में हम जानते हैं इसकी उत्पत्ति गर्भ से होती है, फिर ये मनुष्य बचपन व्यतीत करता है, फिर युवा काल, वृद्ध, और फिर इस देह का त्याग कर दिया जाता है। कौन त्याग करता है इस देह का, किसके इस शरीर में प्रविष्ट होने से इस जीवन में चेतना आई है, ये बात भी मुख्य रूप से जानने के योग्य हैं। तो वास्तव में मूल तत्व आत्मा ही है। हम सब जो बोलते हैं मैं, ये मैं बोलने वाली मैं आत्मा हूँ। हम ये बोलते हैं ये मेरा शरीर है, ये मेरे हाथ हैं, ये मेरा मुख है, ये मेरी आंखें हैं, तो ये मैं बोलने वाला कौन? स्पष्ट है कि ये शरीर, ये हाथ पैर नाक कान मुंह मुझसे अलग हैं, और मैं हूँ एक चेतन शक्ति आत्मा, मैं ज्योति हूँ, पॉइंट ऑफ एनर्जी हूँ, मैं अति सूक्ष्म हूँ, यहाँ दोनों भ्रकुटियों के बीच मेरा निवास स्थान है, जिसकी यादगार में ही मस्तक पर बिंदी या तिलक लगाया जाता है। तो वास्तव में मैं ही असली सत्ता हूँ। ये शरीर जिसमें बहुत सारी कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां हैं, ये तो वास्तव में मैंने धारण किया है, मैंने इसमें प्रवेश किया है, ये प्रकृति से बना है, ये चीज जानने की है। दो चीजें हो गई यहाँ, पुरुष और प्रकृति। इस शरीर का निर्माण प्रकृति से हुआ है, इसलिए इसमें प्रकृति के गुण और अवगुण भी आ गए हैं, उसके जो डिफेक्ट्स हैं, जो उसके दोष हैं, वो भी इसमें आ गए हैं। और वास्तव में मैं तो पुरुष हूँ, अभौतिक हूँ, अविनाशी हूँ, चेतन हूँ, जो कभी मरती नहीं हूँ, इस शरीर में मैंने प्रवेश किया है। तो दो चीजें बिल्कुल अलग हो गई, आत्मा और शरीर। दोनों के मिलन से ये मनुष्य जीवन बना है। यदि दोनों का मिलन न हो तो जीवन न हो। जब तक आत्मा शरीर में प्रवेश न करे, शरीर में चेतनता नहीं आती, और जब आत्मा इस शरीर को छोड़ जाती है, ये शरीर मुर्दा हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। इसको नश्वर कहते हैं, इसका कोई महत्व नहीं रहता। हम हाथ भी नहीं हिला सकते, पैर भी नहीं चला सकते, मुख भी नहीं खोल सकते, आंखों से देख नहीं सकते। तो मूल तत्व आत्मा है जो इस शरीर के द्वारा कार्य कर रही है। तो पहले ये ज्ञान होना मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। यदि बुद्धिमान मनुष्य स्वयं को ही नहीं जानेगा तो उसमें और पशु पक्षियों में अंतर ही क्या रह जाएगा। परंतु आज के इस समय की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मनुष्य बहुत कुछ तो जान चुका है, वो सागर की गहराइयों तक जा चुका है, वो आकाश को नापने का प्रयास कर रहा है, वो चंद्रमा तक, मंगल ग्रह तक और भी ग्रहों तक अपनी पहुंच बना रहा है, परंतु वो अपने को नहीं पहचान रहा है, वो अपने से दूर होता जा रहा है, वो अपने समीप नहीं आ रहा है। अब आवश्यकता इस चीज की है कि हम सब अपने समीप आते जाएं, अपने को पहचानते जाएं। ये था संक्षेप में आत्मा का ज्ञान। इसके बाद ज्ञानी जो आत्मा है, जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके कुछ लक्षण, उसके पास कुछ चिन्ह हमें दिखाई देंगे। क्योंकि उसको ये पता चल जाता है कि मैं आत्मा मूल रूप से पवित्र हूं, इसलिए वो व्यक्ति पवित्रता के मार्ग पर चल पड़ता है। जो लोग विषयी हैं, जो विकारों की चर्चा करते हैं, जो उनमें आसक्ति रखते हैं, उनसे उसका प्रेम नहीं रहता, उस ग्रुप से वो दूर चला जाता है। जो मनुष्य का घर है, परिवार है, स्त्री है, पुत्र है, धन है, उनमें भी उसकी आसक्ति नहीं रहती, वो कर्म भी करता है, अनासक्त होकर करता है। जो ज्ञानी है वो एकांत प्रिय होगा, वो किसी ऐसे स्थान पर रहेगा जो शुद्ध हो, जहाँ प्रकृति का सौंदर्य हो, जहाँ उसका ज्ञान का चिंतन बहुत अच्छा चलता रहे। वो अंदर बाहर से शुद्ध होगा, उसने अपनी इंद्रियों का निग्रह कर लिया होगा, अर्थात उन पर विजय प्राप्त कर ली होगी। वो एक परमात्मा की अव्यभिचारी याद में रहेगा, वो मनुष्यों की याद में अपनी मन बुद्धि को भटकाएगा नहीं, उसने अपने अहंकार को पूरी तरह जीत लिया होगा, वो क्षमावान होगा, मन वाणी से नेचुरल रूप में वो बहुत सरल चित्त होगा। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति परमात्मा को बहुत प्रिय होता है। अब हम थोड़ा सा विस्तार से इन चीजों को ले लें। यदि किसी मनुष्य ने ज्ञान बहुत ले लिया हो, मान लो संपूर्ण गीता स्मरण कर ली हो, इसके 700 श्लोकों को कंठस्थ कर लिया हो, वो गीता का बहुत बड़ा विद्वान बन गया हो, उसने चारों वेदों पर मास्टरी प्राप्त कर ली हो, 6 दर्शन उसको कंठस्थ हो गए हों, लेकिन उसमें अहंकार बढ़ गया हो, उसने पवित्रता को न अपनाया हो, उसने अपने क्रोध को न जीता हो, वो दंभी बन गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे विद्वान को ज्ञानी जन नहीं कहा जा सकता। तो हम सभी ध्यान दें, हम ज्ञानी बने हैं तो हमें समझदार होना चाहिए, सेंसिबल। ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि हमारे पास तर्क वितर्क करने के लिए बहुत सारी बातें हों, बहुत सारे पॉइंट्स हों, लेकिन ज्ञान हमारे जीवन में समा गया हो। ज्ञानी का लक्षण वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, उसकी स्थिति अध्यात्म में होती है और वो केवल एक परमात्मा को ही देखता है। हम अनेक ज्ञानियों को देख सकते हैं जो अध्यात्म में स्थित नहीं है, भौतिकता में जिनकी आसक्ति रहती है, जो लोभ के वश होकर धन के पीछे दौड़ते रहते हैं और अपने आध्यात्मिक ज्ञान को भी धन प्राप्ति का आधार बना लेते हैं। इसमें अध्यात्म की अलौकिकता, उसकी दिव्यता और उसकी शक्तियां छीन होकर नष्ट हो जाती हैं। वो एक परमात्मा को ही देखता है। संसार में हमें बहुत सारे मनुष्य दिखाई देते हैं, मनुष्य का ये स्वभाव है कि वो मनुष्य को देखकर उनको फॉलो करता है, अमुक व्यक्ति ये कर रहा है, फलाना व्यक्ति ये कर रहा है, उसने ये किया, उसने ये किया। उसमें भी जो महत्व के लोग हों, जिनका बहुत नाम हो, उसे वो निरंतर देखता है। जैसे आजकल फिल्मों का और खेलों का समय है, इन दोनों का ही महत्व बहुत ज्यादा है। डांस और गायन विद्या का भी बहुत ज्यादा प्रचलन है। इनको करने वाले, इनमें पार्ट लेने वाले, इनमें जो एक्टर्स हैं, उनको आज का युवा वर्ग देखकर फॉलो करता है। जैसे वस्त्र उन्होंने पहने हैं वैसे ही वो भी पहनता है, जिस तरह वो चलते हैं वैसे ही वो भी चलता है, जो उनके संस्कार, जो उनकी चाल ढाल, वैसा ही वो भी अपनाना चाहता है। परंतु ज्ञानी का लक्षण ये नहीं है। ज्ञानी तो केवल परमात्मा को देखता है, उसको देखकर उसका अनुसरण करता है, उससे उसका जीवन श्रेष्ठता की ओर चलने लगता है। जिसके पास संपूर्ण ज्ञान होगा वो मननशील अवश्य होगा, वो क्षमा भाव रखने वाला होगा, और मनन चिंतन के लिए उसे एकांत की बहुत आवश्यकता होगी। ऐसा स्थान जहाँ किसी भी तरह का डिस्टरबेंस उसे न हो, जहाँ किसी भी तरह की अशुद्धि या दुर्गंध भी न हो। इससे भी श्रेष्ठ बात तो ये है, जहाँ किसी भी तरह के व्यर्थ, निगेटिव, तमो प्रधान वाइब्रेशन ही न हो, जहाँ आसपास कोई ऐसा मनुष्य न रहता हो जिसकी तामसिक तरंगे उस मनुष्य के, उस ज्ञानी के चिंतन को तमो प्रधानता की ओर ले चले, वो सदा श्रेष्ठ चिंतन में रहे। इसलिए ऐसे शुद्ध और एकांत के वातावरण को ज्ञानी जन ढूंढते हैं, इसी का वर्णन उसने किया है। गीता में जो बात आ गई वो अव्यभिचारी रूप से परमात्मा को याद करता है। आजकल संसार में जो भक्ति भी हो रही है वास्तव में वो अव्यभिचारी नहीं रही है। ये अव्यभिचारी शब्द का यहाँ प्रयोग किया है, यानी एक की नहीं रही है, जबकि हम ये जानते हैं परमात्मा तो एक ही है, वही हमारा परमपिता है। हमें केवल याद उसको ही करना चाहिए, भक्ति भी उसकी ही होनी चाहिए, योग भी उससे ही लगना चाहिए। परंतु उसको भूलकर मनुष्य अनेकों में भटक गया है। जिसकी भी चाहता है वो भक्ति करता है, जिसके बारे में भी उसे पता चल जाता है कि अमुक देवी या देवता मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, उनकी और ही वो आसक्त हो जाता है, और इस तरह उसका ध्यान परमात्मा से हटता जा रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से उसकी अल्पकालीन मनोइच्छा अवश्य पूरी हो जाती है, लेकिन उसका नाता परमात्मा से टूटा ही रहता है, और वो मनुष्य छोटी इच्छाओं की पूर्ति से प्रसन्न होकर उन देवी देवताओं की ओर आकर्षित होता रहता है, परमात्मा को भूल जाता है। इससे नुकसान क्या हो रहा है कि उसका सर्वोच्च सत्ता से संपर्क टूट गया, संबंध टूट गया। ऐसा कहें जैसे कि एक मनुष्य किसी वृक्ष के, किसी पौधे के जड़ में पानी डालने की बजाय पत्ते पत्ते को सींच रहा हो, तो भक्ति की स्थिति यही हो गई है, और इस कारण से जीवन में सुख शांति गुण और शक्तियों के, संतोष और सरलता के फल फूल नहीं लग रहे हैं। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, फिर से तुम मेरी ओर बढ़ो, केवल मेरे से लगन लगाओ, केवल मुझे याद करो, अपनी बुद्धि मेरे स्वरूप में स्थिर कर दो। ये है अव्यभिचारी योग, अव्यभिचारी याद। ज्ञानी का यही एक बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण है। इसी तरह जो ज्ञानी आत्मा होगी, जैसे हम कह आए हैं, उसके चित्त में अहंकार का अभाव होगा। श्रेष्ठताओं का जो अहंकार मनुष्य को आ जाता है, अपने धन का जो अभिमान मनुष्य को आ जाता है, अपनी योग्यताओं के अभिमान में जो वो फूल जाता है, या जो प्राप्तियां होती हैं उसका भी उसे अहंकार हो जाता है। ज्ञानी समझता है कि अहंकार बहुत कष्ट देने वाला, मनुष्य को पतन की ओर ले जाने वाला, उसके ज्ञान को नष्ट करने वाला, उसके विवेक को दूषित करने वाला है। इसलिए ज्ञानी जन सोच समझकर अभिमान में नहीं आते हैं। ऐसे ही ज्ञानी का एक जो बहुत अच्छा लक्षण दिखाया गया है, भीतर और बाहर से शुद्ध, इसकी चर्चा भी श्रीमद् भगवत गीता में अनेक बार आ गई है। शुद्धि ही वास्तव में ज्ञानी का लक्षण है। यदि कोई मनुष्य बाहर से अशुद्ध रहे, मैले कपड़े पहने, शरीर को भी धोए नहीं, स्वच्छ न करे, तो उसे भला ज्ञानी कौन कहेगा। यदि कोई मनुष्य शुद्ध भोजन न करे, शुद्ध स्थान पर आहार विहार न करे, तो उसे ज्ञानी भला कौन कहेगा। जिसने अपने चित्त को शुद्ध न किया हो, जिसने अपने विचारों को श्रेष्ठ न किया हो, उसको भी भला कोई ज्ञानी क्यों कहेगा। ऐसे तो संसार में अनेक लोग हमें दिखाई दे जाएंगे जो अशुद्ध हैं, जो बाहर भीतर दोनों से अशुद्ध रहते हैं, जिनको स्नान करने के लिए भी एक एक हफ्ते का समय बीत जाता है, जो भोजन सदा तामसिक करते हैं, और आज के युग में तो फैशन ही हो गया है कि तामसिक भोजन नॉन वेज, ये तो एक श्यान समझी जाती है। लोग समझते हैं जो धनवान हैं उनका तो यही भोजन है, परंतु दूसरों को मार कर उनका मांस खाना ये बिल्कुल तामसिक है, हिंसक प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, मनुष्य को अशुद्धि की ओर ले चलता है। परमात्मा ऐसे मनुष्य को कभी प्यार नहीं करता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भक्ति भी बहुत करते हैं, भगवान के प्रति प्यार भी बहुत रखते हैं, उसकी कथाएं कीर्तन भी बहुत कराते हैं और स्वयं भी श्रवण करते हैं, लेकिन जिनका भोजन तामसिक है उन्हें जान लेना चाहिए भगवान उनकी इस भक्ति को, इस प्रेम को स्वीकार नहीं करता है। तो अंदर बाहर से शुद्धि ज्ञानी जन का एक मुख्य लक्षण है, और इसी के साथ ये भी जान लें, बहुत सुंदर शब्द आ गया है, मन और वाणी की सरलता। जो ज्ञानी है, क्योंकि उसका अभिमान दिनों दिन समाप्त होता जाता है, क्योंकि मैंपन से वो आत्मा दिनों दिन दूर होती जाती है, इसलिए उसके विचारों में, उसके बोलने में इजीनेस, सहजता या सरलता आती जाती है, क्लिष्टता नहीं रहती। वो क्रोधवश नहीं बोलता, वो जल्दी जल्दी नहीं बोलता, वो हर बात में सीरियस नहीं होता, वो बहुत सरल चित्त हो जाता है। ये सब ज्ञानियों के लक्षण हैं। उसमें क्षमा भाव भी बढ़ जाता है, सभी के लिए प्रेम भाव भी बढ़ जाता है। बहुत अच्छा एक शब्द आ गया है गीता में यहाँ कि प्रिय और अप्रिय दोनों तरह के ही मनुष्यों में वो समान भाव रखता है, वो किसी भी जीव को सताता नहीं है, कष्ट नहीं देता है। दोनों चीज बहुत ही गुह्य हैं। आज तो मनुष्य को दूसरों को कष्ट देने में ही सुख महसूस होता है। बहुत से लोग हैं जो बदला लेने की भावना से प्रेरित हैं, और जब तक वो दूसरों को कष्ट न पहुंचा दें, सता न लें, बदला न ले लें, जब तक दूसरे उनके आगे रोने न लगे, तब तक उनको शांति नहीं मिलती। ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है। ज्ञानी तो वो है जो दूसरों के दुख हरता है, जो दूसरों को सदा सुख देता है। तो हम सभी बहुत अच्छी तरह विचार करके अपने को समझा दें कि यदि हमें सुख पाना है तो सुख देना है। जो मनुष्य दूसरों को सुख देता है, सुख उसके पास कई गुना होकर वापिस आ जाता है, और जो मनुष्य दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, सताता है, उसे तो कष्टों में ही जीवन व्यतीत करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति बाहर से भले ही कितना भी प्रसन्न रहे, वो अंदर रोता है, और विशेष रूप से जैसा कि संसार में हम देख रहे हैं, अंतिम यात्रा, अंत के 5, 7, 8 साल, 10 साल ऐसे व्यक्ति के कष्ट भोगते हुए व्यतीत होते हैं, रोगों से लड़ते हुए व्यतीत होते हैं। ऐसे व्यक्ति का अंतकाल बहुत ही दुखदायी, बहुत ही कष्टदायी हुआ करता है। आज ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई है जो मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। हम पहचान लें कर्मों की इस गुह्य गति को। यदि हमें सुखी रहना है, सुख पूर्वक जीवन की यात्रा तय करनी है, तो किसी को भी बोल से, संकल्पों से भी कष्ट न दें। हम बोल कर दूसरों को बहुत दुख देते हैं, हम दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, हमारे बुरे बोल और हमारा बुरा चिंतन, बुरे संकल्प दूसरों को कष्ट पहुंचाते रहते हैं। इससे भी हम मुक्त हो जाएं और सभी में समान भाव रखें तो वास्तव में हम प्रभु प्रेमी बन जाएंगे, जीवन का सुख प्राप्त करेंगे।
तो आपने देखा कि हम प्रभु का प्रेम तभी प्राप्त कर सकेंगे जब हम अपने जीवन में सभी के लिए समान रूप से श्रेष्ठ और महान विचार रखेंगे। आज से ही हम अपने चित्त पर सभी के लिए सकारात्मक विचार रखना शुरू कर दें। यदि आपके मन में कोई सुझाव अथवा प्रश्न आते हों तो हमें जरूर लिख भेजिए। हमारा पता है ओम शांति वीडियो चैनल, शांतिवन, तलेटी, आबू रोड। हमारा पिन कोड नंबर है 307510। हमारा नंबर है
मोतियों को सांसों में है सिरों पे सागर।